ओम शांति। मुरली 11-3-71 पूरी पूरी मुरली कुमारों के प्रति है। 71 तो मुरली का आगे का भाग आज कुमारों की भट्टी का आरंभ है ना। भट्टी का आरंभ अर्थात किस चीज का आरंभ? तपस्या का आरंभ, संस्कार परिवर्तन का। और भट्टी का आरंभ अर्थात किसका आरंभ? परिपक्व होने का आरंभ। तो भट्टी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ, तपस्या का आरंभ। तपस्या अर्थात कल का वरदान, तपस्या अर्थात एक बाप की, बाप के लव में लीन, सुख शांति आनंद प्रेम के सागर में समाये हुए। तो भट्टी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ। कोई स्वाहा होगा, कोई भट्टी में पकेगा और कोई प्यूरिटी का संकल्प तो दृढ़ करेगा। यहां तो करने लिए ही आए हो ना, अब देखना है कि जो कहा वह किया। यह जो ग्रुप है वह पूरा माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनकर जाना है। माया से इनोसेंट, इनोसेंट अर्थात निरागस, मासूम, निरपराध, और ज्ञान से सेंट, सेंट अर्थात संत साधु। जैसे सतयुगी देवता आत्माएं जब यहां आती है तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है। देखा है ना, आपको याद आता है कि जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी? माया की नॉलेज से इनोसेंट थी, याद आता है। अपने वह संस्कार स्मृति में आते हैं, वह सुना हुआ है इसलिए समझते हो। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती है, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वह कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह स्मृति में लाना पड़ता है। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह हाथ उठाओ। यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए, साकार रूप में अर्थात ब्रह्मा बाबा में स्पष्ट स्मृति में थे ना। यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदा काल रहेगी, तो फिर यह स्मृति भी स्पष्ट और सदा काल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, इसलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। आपके चित्र में ऐसा दिखाया है, एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति बाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया ना, यह चित्र किसके लिए बनाया है? दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए? तो भविष्य संस्कार को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे अर्थात अनुभव में आए। तो अब कुमारों को क्या करना है? सेंट भी बनना है, इनोसेंट भी बनना है। सहज पढ़ाई है ना, दो शब्दों में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। यह छाप लगाकर जाना, कमजोरी परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट, कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है। इस ग्रुप का नाम कौन सा है? सिंप्लिसिटी और प्यूरिटी में रहने वाला ग्रुप। जो सिंपल होता है वह ब्यूटीफुल होता है। सिंप्लिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं लेकिन सभी बातों की। निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल, यह सिंप्लिसिटी प्यूरिटी का साधन है। अच्छा, स्लोगन क्या याद रखेंगे? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे फिर कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे फिर कहेंगे, यह स्लोगन सदा याद रखना। तो बाबा कह रहे हैं आज कुमारों की भट्टी का आरंभ है। भट्टी का आरंभ होना अर्थात किसका आरंभ होना? परिपक्व होने का, पकने का, मैच्योरिटी का आरंभ। अध्यात्म में पकना है। कोई स्वाहा होगा, कोई भट्टी में पकेगा और कोई कोई क्या करेंगे? प्यूरिटी का संकल्प दृढ़ करेंगे। प्यूरिटी तो है, प्यूरिटी का व्रत ले चुके हैं, ब्रह्मचर्य धारण कर चुके हैं, परंतु इस संकल्प को, इस व्रत को दृढ़ करना, पुनः दोहराना, पुनः उसमें स्वयं को स्थित करना, बार बार स्वयं को याद दिलाना और प्यूरिटी की धारणाओं को और मजबूत करना, यह इस भट्टी का लक्ष्य है। यहां तो करने के लिए ही आए हो ना, अब देखना है कि जो कहा वह किया। बाबा देखेंगे जो कहा वह किया। दुनिया को चैलेंज करने वाले हो, संडे की मुरली में था ना, दुनिया को चैलेंज करने वाले हो, माया को चैलेंज करने वाले हो, विघ्नों को चैलेंज करने वाले हो, अपने ही पुराने संस्कारों को चैलेंज करने वाले हो। सबसे पहले ये कार्य करना पड़ेगा, तब कहीं विश्व की आत्माओं को चैलेंज कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे देखना है कि जो कहा वह किया। यह जो ग्रुप है वह पूरा माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बन कर जाना। दो शब्द है, एक है इनोसेंस, निरागसता, निर्दोषता, और दूसरा है सेंट। सेंट अर्थात संत, महान आत्मा। उदाहरण बाबा दे रहे हैं कौन सा इनोसेंट के लिए? जैसे सतयुग की आत्माएं जब यहां आती है तो क्या होता है? आती है
संगम के बाद,
संगम के बाद आएगी, तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है। उन्हें पता ही नहीं विकार क्या होते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं, अविद्या है विकारों की, अविद्या है कमजोरी की, अविद्या है व्यर्थ की, अविद्या है निगेटिव की। ऐसी हमारी स्थिति हो जाए। आपको याद आता है ना कि जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी? माया की नॉलेज से इनोसेंट थी, याद आता है? अपने वह संस्कार स्मृति में लाते हैं, वाह सुना हुआ है इसलिए समझते हो। जैसे दूसरा उदाहरण दे रहे बाबा, अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती है, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वह कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कार के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह स्मृति में लाना पड़ता है। जैसे इस जन्म के संस्कार, बचपन के संस्कार, बचपन की बातें अगर याद करो तो याद आती है। बाबा ने कहा है 5 वर्ष के बाद की बातें साकार मुरलियों में कहा है याद आती है। तो जैसे कल की बातें याद आती है, वैसे हमारा जो कल था जब हम देव स्वरूप में थे, संपूर्ण देवत्व हम में जब समाया हुआ था, जब ये धरती देव लोक थी, जब इस देव भूमि पर हम विचरण कर रहे थे, हमारे वह देवताई संस्कार कैच करना है, पकड़ना है, स्मृति में लाना है। बाबा कह रहे हैं स्मृति में आते हैं या लाना पड़ता है। जो समझते हैं क्या हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में है। वह हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, इतने ही स्पष्ट है जितने बचपन के संस्कार स्पष्ट है। कौन सी बाधा है बीच में, कौन सी खाई है कमलेश भाई? दिख नहीं रहा है उधर का कुछ, क्यों? हम यहाँ और वो वहाँ, देवता यहाँ है हम यहाँ है, बीच में क्या है उसका क्या करे? दीवार है। संगम इसके सुवेच और भी कुछ है? अभी अभी इसी पल और इसी वक्त सीधा अपने उस संस्कार को इमर्ज करो जहां पर भी हम बैठे हैं अभी, राइट नाउ। एक पल के लिए हम देखें, हो सके तो आंखें बंद कर भी देख सकते हैं या आंखें खोलकर, कि जहां पर अब मैं बैठा हूं, जैसे अब ये देह नहीं रहा और अब ये देह मैं देव शरीर में हूं, मैं आत्मा देव शरीर में हूं, सिर पे ताज तिलक और तख्त नशीन हूं, संपूर्ण पवित्रता में स्थित हूं। प्यूरिटी का ताज, संपूर्ण निर्विकारिता, कंप्लीट इनोसेंस, संपूर्ण पवित्र, सभी कलाओं में संपूर्ण, सभी दिव्य गुण से भरी हुई मैं देव आत्मा हूं। तो बाबा कह रहे हैं यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए, बीच बीच में यह अभ्यास करना है। इसी देह में, यह देह नहीं रही और देवता ही स्वरूप वहां आ गया, साकार रूप में ब्रह्मा बाबा में स्पष्ट स्मृति में थाना। यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। देवताई संस्कार अगर हम देह भान में है तो याद आना बहुत मुश्किल है, परंतु हम है ही अगर आत्मिक स्वरूप में तो वो तुरंत याद आएंगे, जो फिर यह स्मृति में भी स्पष्ट और सदाकाल रहेगा। तो निरंतर आत्मिक स्मृति, निरंतर आत्मिक स्मृति का अभ्यास, आत्मिक स्मृति की साधना करनी है। अभी आत्मिक स्मृति, स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, देह का पर्दा, उसके अंदर आत्मा छुप जाती है, यह स्मृति छिप जाती है। तो क्या करना, इसलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। ये जो खाई है वो खाई इसलिए है क्योंकि देह की स्मृति है। जब देह की स्मृति गिर जाए और केवल आत्मा की स्मृति रहे तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, केवल दिखाई देगा नहीं, अनुभव होगा। आपके चित्रों में क्या दिखाया है, चित्र में एक तरफ विकार भाग रहे हैं, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति बाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ है। याद आया चित्र? एक तरफ राजयोगी बैठा हुआ है जिसकी स्मृति आत्मिक स्वरूप में स्थित है और स्मृति में बाबा है, एक तरफ भविष्य प्राप्ति और एक तरफ इधर विकार भाग रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना, यह चित्र किसके लिए बनाया है, किसके लिए बनाया है ये चित्र? कोर्स कराने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। बाबा ने साकार मुरलियों में कहा है, इस चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ और क्या करो, चित्र को देखो और क्या करो, हम यही है। और हाँ, कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हैं, सोचो इस चित्र को देखकर, चित्र को देखो, ऐसी दिव्यता मुझ में है, ऐसी पावनता मुझ में है, ऐसी पवित्रता मुझ में है, ऐसी चमक मुझ में है। हर्षित मुख, सब कुछ पावन है, सब कुछ सुंदर है, ऐसे दिव्य गुण मुझ में है, ऐसी अहिंसक भावना मुझ में है। यह चित्र किसके लिए बनाया है, दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए? तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए क्या करना है फिर? आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट रहे, आत्मिक स्मृति सदाकाल रहे, क्योंकि इस आत्मा में सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कैसे हो, यही प्रश्न है। निरंतर आत्मिक स्मृति कैसे हो? व्यक्ति भिन्न भिन्न स्मृतियों में जीता है, या कहे कि एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न रूप है। सुबह कुछ और है, वो दोपहर को कुछ और है, शाम को कुछ और है, और रात को कुछ और है। विभाजित है व्यक्तित्व। सुबह का जो व्यक्ति है, जो आत्मिक स्वरूप में स्थित है, योग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दोपहर में वो व्यक्ति नहीं है, अभी कोई और आ गया है उसके स्थान पर, नकली आदमी। शरीर वही है, रूप वही है, पर आदमी दूसरा है। शाम को कोई तीसरा ही आदमी है, रात को भी कोई तीसरा और ही कोई है, खंडित व्यक्तित्व। इन सब को एक कर देना, एक ही स्मृति में लंबा समय टिकना, उसके लिए जबरदस्त साधना की आवश्यकता है। सुबह का समय जो है, सबसे पहले तो उसको शक्तिशाली बनाना है, 9 बजे तक का। फिर जो दिनचर्या है, फिर शाम का जो समय है, सेवाओं का जो समय नहीं है, सबसे पहले उसको शक्तिशाली बनाना है। जहां सेवाएं नहीं है, सुबह का, नुमा शाम के, योग के बाद का, रात को सोने समय का, सोते समय का, वो समय उसको शक्तिशाली, ये तीनों पर काम करना। फिर दिन का जो समय है, सेवाओं का समय है, धीरे धीरे उसको योगयुक्त बनाना, धीरे धीरे उसको भी शक्तिशाली बनाना। उसमें भी छोटे छोटे योग के अभ्यास करना, छोटी छोटी ड्रिल करना, केवल देखना स्वयं को कि मैं आत्मा हूं, या मुझसे आत्मिक किरणें निकल रही है। छोटा सा अभ्यास है, पर इस अभ्यास को कहीं पर भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। बार 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 ये अभ्यास, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है। देहवान के संस्कार बहुत पक्के हैं, बिना जबरदस्त साधना के ये अभ्यास होने वाला नहीं है। ये स्वरूप में नेचुरल और नेचर नहीं बनने वाला, परंतु एक बार आदत पड़ गई तो होगा। जैसे अगर कोई सोचे, सुबह सुबह जो सुबह सुबह नए नए ज्ञान में आते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है सुबह अमृत वेला उठना, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से वह भी संभव हो जाता है। 4 बजे उठने का लक्ष्य रखते हैं तो धीरे धीरे संभव होने लगता है। फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ती है तो 15 मिनट और पीछे जाते हैं, तो फिर और हिम्मत आ जाती है, फिर और 15 मिनट पीछे जाते हैं, 3:30। लंबा समय तक उठने का अभ्यास है, पर अगर कोई सोचे कि मैं इससे भी पहले उठूं तो हो सकता है या नहीं हो सकता है? वो भी संभव है। सब कुछ संकल्प और अभ्यास पर निर्धारित है, अवलंबन उसके ऊपर है, हमारा संकल्प कितना दृढ़ है। जैसे जैसे हम संकल्प करते जाएंगे, वैसे वैसे आदत होती जाएगी। जैसे यह आदत है, वैसे ही आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की आदत डालनी है। बार बार सबको देह ना देखते हुए आत्मा देखना, ये सब आत्माएं हैं, ये आत्माओं की नगरी है। ऐसे ऐसे संकल्प मन में लाने हैं। तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे, जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देता है। देह में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि देह है या पत्थर है, देह है या लकड़ी है, इसका कोई कंफ्यूजन नहीं है। पता नहीं दीवार है, खंबा है, क्या है, इसका कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्पष्ट है। तो वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में लाए। तो अब कुमारों को क्या करना है, सेंट भी बनना है, इनोसेंट भी बनना है। सेंट जो होता है, संत जिसको कहते हैं, महान आत्मा, सेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? संसार में जो सेंट बने हैं उन्होंने क्या किया? त्याग, नम्रता और समाज सेवा, समाज सुधार, और नहीं उससे भी संत, उसके भी ऊपर के कार्य करने पड़ते हैं, सहन करना पड़ता है। तुका मने संत सोसी जगाचे आघात, संत वो है जो संसार के आघात सहन करता है। तो जितना ज्यादा सहन करता है, चंद्रशेखर भाई हथौड़ा और छन्नी से सहन करते करते मूर्ति तैयार होगी। पहले पहले तो छन्नी जो होती है बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, फिर बाद में छोटे छोटे पत्थर। इधर नाक ठीक करनी होती है तो बहुत ही फाइन, दर्द भी थोड़ा ज्यादा होगा उसमें। पहले तो इतना दर्द नहीं था जब बड़े बड़े पत्थर तोड़ने थे, एक मारा और गिरा नीचे धाड़ से, घर को छोड़ दिया धाड़ से, हो गया। लोगों ने विरोध किया, एक मारा वो भी, तो वो तो छोटे छोटे है। ज्ञान में आने के बाद ब्राह्मण परिवार की जो छन्नी और हथौड़ा है वो थोड़ा चुभता है, क्योंकि हमें पावरफुल और शक्तिशाली और सुंदर बनाने का दायित्व ब्राह्मण परिवार ने अपने कंधों पर लिया है। तो संत अर्थात एम्बॉडीमेंट ऑफ टॉलरेंस, सहन करना, सोसी जगाचे आघात, तो ची संत। तो संत भी बनना है और इनोसेंट भी बनना है। सहज पढ़ाई है ना, बहुत ही सहज है, बात मत पूछो। दो शब्द में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, या छाप लगा कर जाना, कमजोरी परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट, कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है। इस ग्रुप का नाम कौन सा है? सिंप्लिसिटी और प्यूरिटी में रहने वाला ग्रुप। जो सिंपल होता है वह ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटीफुल कौन है? जो सिंपल है, साधारण। सिंप्लिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं, ऊंची साड़ी तो छोड़ दी, सफेद में भी बहुत माया है। सफेद में भी भिन्न भिन्न रंग है, सफेद के भी। सभी बातों की निरंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, ऐसा शब्द हिंदी भाषा में हमने कभी नहीं सुना है। हिंदी साहित्य में निर्क्रोधी, निक्रोधी भी आता है कभी कभी मुरली में, निक्रोधी और निर्क्रोधी। तो निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल, यह सिंप्लिसिटी प्यूरिटी का साधन है। अच्छा, स्लोगन क्या याद रखेंगे? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। शक्तिशाली होते हैं, बहुत पावर होती है उनमें, सब में होती है, माताओं में उससे ज्यादा होती है। जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। बड़े बड़े आश्वासन पहले नहीं देना है, पहले करके दिखाना और फिर कहना। इसी क्लास में कई सालों पहले यहीं बैठे हुए एक कुमार था जिसने यहां से प्रतिज्ञा कर कर गया था। जो यहां उस समय होंगे उन्हें याद होगा, यहीं पर बैठकर बहुत सालों पहले, जो कि डॉक्टर थे और बहुत जबरदस्त प्रतिज्ञा की थी यहीं क्लास में, लगभग 13-14 साल पहले इसी क्लास में बैठकर, कि अभी पढ़ाई करने जा रहा हूं पोस्ट ग्रेजुएशन की, और आते ही बस सीधा समर्पित, इतना पुरुषार्थ का नशा था, इतना उमंग था, इतना जोश था। और यहाँ से गए, वो दिन भी मुझे याद है, जब वो भाई, जब वो डॉक्टर यहाँ से जा रहे थे, 18 जनवरी का दिन, बाबा आ रहे थे और वो ट्रेन में बैठ रहे थे, क्योंकि ट्रेन थी उस समय उनकी। तो यहाँ से पढ़ाई करने गए साउथ में, पढ़ाई पूरी हुई, आने के लिए पुकारा गया, तो कहा आता हूँ थोड़ी देर के बाद। फिर बुलाया, बोले और थोड़ी पढ़ाई करनी है, और थोड़ी पढ़ाई करनी है, और थोड़ी पढ़ाई करनी है। फिर एक से अभी दो हो गए। माया किस रूप में आती है बता नहीं सकते। इतना नशा, इतना नशा पुरुषार्थ का उस समय था, जबरदस्त नशा। अभी भी बीच बीच में आते हैं तो मिलते हैं, तो कहाँ माया और किस तरह से आ जाए खुमार जीवन में। वो भी जिसको साथी बनाया, वो भी दोस्ती कहाँ से हुई, इंटरनेट से केवल। कितनी जबरदस्त माया है, कितना उनको नशा था, हम देखते थे उन्हें तब। तो आज तो पता नहीं कहाँ है, ये भी नहीं पता
दूसरे के लिए अंदर दिया।
कहाँ है, क्या हुआ, कुछ खबर नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। तो केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर दिखावे की कोई बात नहीं है, यहाँ पर किसी को कहने की कोई बात नहीं है, यहाँ स्वयं स्वरूप बनना है, स्वयं धारणा मूर्त बनना है। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर करेंगे। यह स्लोगन सदा याद रखना। ये पूरी ही मुरली कुमारों के प्रति है, 11/3/71 की, 11th March 1971। और इस किताब में ये पूरी ही मुरली कवर हुई है। इस मुरली को हम फिर से बीच बीच में दोबारा रिवाइज करेंगे। आज किसका क्या ना?
कितनी बड़ी बताया, फिर रिवाइज करा रहे हैं, याद है आपका ये।